आयत नंबर 17 से क्या बात हमारे सामने आई कि इस्लाह अमल करना है, नमाज कायम करनी है, नेकी का हुक्म देना है, बदी से मना करना है, और जो मुसीबत भी पड़े इस पर सब्र करना है। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है और ये बड़े बड़े कामों में से है, बड़े अमलों में से है। तो हम अपनी एक बहन से पूछते हैं कि ये अभी अभी आई हैं पाकिस्तान से, तो जितना भी पढ़ा है हम में से हर मुसलमान का ये फर्ज बनता है कि हम कोशिश करें अमल करने की, तो इन्होंने जो है वो वहाँ पे क्या किया।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं 1.5 महीने पहले पाकिस्तान गई हुई थी, अभी संडे को वापस आई हूँ, और अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मिसहैप नहीं हुआ, अल्लाह का बहुत एहसान है। पाकिस्तान में जैसे हालात चल रहे थे और मुझे बड़ा डर था कि अमूमन आप करेंसी चेंज कराने जाते हैं तो भी आपको मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ मिसहैप हो जाता है, या आप कुछ पहन के घर से निकले हैं या कुछ भी, मतलब वहाँ के तो हालात ऐसे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस हर वक्त दुआओं का सहारा था और अल्लाह की मदद थी कि अल्हम्दुलिल्लाह वापसी हो गई खैर खुबी से। और पाकिस्तान जाके इस दफ़ा बहुत शॉक्ड हुआ क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा था, हम लोग भी जब थे तो था ये सब चीज़ें, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही एहसास हुआ कि शो ऑफ और फैशन और मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और आप अगर कोई काम ठीक करना भी चाहते हैं तो आपको इतनी बातें सुननी पड़ जाती हैं कि लगता है कि आप चोर से हो गए। बहरहाल जाते हुए मैंने यहाँ से घर से निकलते हुए मैंने फिर 2-3 दिन पहले सूरह नूर के उसमें आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त की थी कि आप लोग दुआ करें, और पता नहीं किसकी दुआ थी कि अल्लाह ने मुझे पर्दे की तौफीक दी, और मैं घर से एयरपोर्ट जाते ही फिर मैंने नकाब कर लिया था, और उस पर बहुत दुआ करती रहती थी कि अल्लाह मुझे साबित कदम रखे, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है इंसान इंसान की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन खैर अल्लाह ने मुझे साबित कदम रखा अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान गई तो हर एक ये कि ये तुम बहुत बदल गई हो, पता नहीं तुम कैसी हो गई हो, तुम कपड़े बनाने की बात ही नहीं करती, इतनी शादियां खड़ी हैं पहनोगी क्या। मैंने कहा भाई शादियां तो गुजर ही जाती हैं, मैंने कहा मैं पहनूं, और मैंने मेरी चूड़ियां और बुंदे देखकर मतलब किसी को कुछ याद नहीं रहता है, तुम लोगों के सिर्फ जहन का वो है, ठीक है कुछ ना कुछ पहनने को मिल ही जाएगा, लेकिन ये कि लेकिन बस बहनों को यही एक था कि तुम तो इतनी खपती हुआ करती थी कपड़ों के मामले में, तुम्हें हो क्या गया। और मैं हर रोज सुबह उठ के, अब तुम्हारे सफर का वो टूटा तो चल के कपड़े खरीद लो, मैं खरीद लेंगे नहीं तो देखो दर्जी नहीं लेगा, फिर बकरीद सामने खड़ी है, फिर तुम्हारे कपड़े कौन लेगा। मैंने कहा सिल जाएंगे कोई मसला नहीं, नहीं होगा पुराने पहन लेंगे। इत्तेफाक ये हुआ कि जाते टाइम मैंने यहाँ से सारे कपड़े अपने बकौल वो बाजी ने कहा था असराफ और तबजीर की वो करके और क्लोजेट साफ करें, तो मैं सारे उठा के ले गई थी पाकिस्तान में। दूसरे तीसरे दिन ही मैंने सारे कपड़े जो है वो बहन को कह दिया कि भी तुमको जो जरूरतमंद लगता है उसको, ये मेरे सारे अच्छे नए कपड़े हैं, लेकिन वो कोई फिटिंग आउट हो गई है कुछ है तो ये तुम दे दो जिस किसी को भी देना है, तो वो भी मेरे पास से चले गए थे। फिर खैर वो बहनों के पुरजोर इशरार पे शॉपिंग शुरू हुई, कुछ मेरी बहन ने 2-4 जोड़े लेके रखे तो उसको सिलवा विलवा के पहनना शुरू किए। कमिटमेंट की वहाँ हालत यह है कि काम के वक्त आप जिस किसी के पास जाएं तो वो कहता है हाँ हाँ सब हो जाएगा, और उसके बाद आपको इतना रुलाता है कि मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का नहीं हुआ कि मुझे कपड़े वक्त पे नहीं मिले, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि कमिटमेंट की कोई अहमियत नहीं रही अब, और 1, 2, 3, 4 नहीं मतलब जिस पे हाथ रखा उसने कंधा हिला दिया। तो शादियों के सिलसिले में बहनों ने बड़ा कपड़े वपड़े तो खरीदवा दिए चल के, लेकिन शादियां मेरे यहाँ 2-3 थी लगातार, बहन की बच्ची की नंद की बच्ची की, फिर बीच में इधर उधर से भी बुलावे थे। 21 तारीख को तमाम शादियां जो घर की थी वो खत्म हो गई और मुझे शादियों के कपड़े सिल के मिले हैं आने से एक दिन पहले, मगर मुझे इसका कोई वो नहीं, मेरी शादियां तो गुजर गई और मैंने पुराने पहन लिए, और पुराने भी अपने मेरे पास रह नहीं गए थे, वो मैंने सब दे दिए थे। तो फिर बहन ने मुझे अपने निकाल निकाल के दिया, वो नया दे रही, मैंने कहा नहीं मैं नया तो मुझे नहीं पसंद है किसी की मैं नई चीज लेके इस्तेमाल कर लूँ, मैंने कहा पुराने वुराने हैं दे दो, जो तुम्हारे थोड़े फैंसी हैं जो पुराने हैं वो तो पहन लूंगी। लेकिन फिर ये कि पर्दा करने की वजह से फिर ये भी सहूलत हो गई कि अंदर कुछ भी है पुराना ही सही, अगर वो बहन के जिस्म पे किसी ने देख भी लिया था तो सो व्हाट, मेरा तो अंदर ही था। फिर मैंने दोनों जगह शादियों में बहन के घर भी और नंद के घर भी पूछा कि भाई पर्दे का आप लोगों को कोई है सेपरेशन, हाँ हाँ सेपरेशन है तुम बेफिक्र रहो। अब वहां सेपरेशन के नाम पे बीच में एक टेबल, मर्दों और औरतों के बीच में एक लंबी सी टेबल, और उस पर फूल रखे हुए, वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। और जिस वक्त, और ये चीज अब मैंने ज्यादा महसूस की कि पहले भी हम लोगों के अलग अलग होता था, एंड में जो है मर्द आ जाते थे, रुखसती के वक्त होता था भाई बाप चचा मामू को बुला लो। लेकिन अभी तो बाप चचा इस कदर बेचैन थे कि इधर फंक्शन शुरू हुआ और वो जहाँ का तगी और बिल्कुल औरतों के डब्बे में घुसे हुए। आखिर वक्त तक फिर वहां पर कुछ औरतों ने, जो हमारी रिश्तेदार भी थी, मेरा नकाबी खींचना शुरू कर दिया कि तुम तो पागल ही हो गई बिल्कुल ही, अब क्या है, कौन सारी दुनिया तुम्हें ही देखेगी और तुमने इस उम्र में करने की क्या जरूरत थी, और सारी जवानी तो गुजार दी और अब चलियो बड़ा तुम बनने। तो अब 2-3 दिन तो नकाबी पकड़ के खींच लिया, खैर बहरहाल पी गई, अब सबर भी करना था, वो भी पी गए, फिर तस्वीर क्यों नहीं खिंचाती। मैंने कहा भाई मैं आपके किसी अमल में तो नहीं कह रही, तो पर आप मुझे बख्शो, नहीं तो तुम सगी मामानी हो, सगी खाला हो, तुम तस्वीर नहीं खिंचाओगी। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं खिंचवा रही। तो बहरहाल ये कि लोग बोलते तो जरूर है, लेकिन थोड़ा सा अल्लाह की तरफ से साबित करनी होती है तो आप उस पर डट जाते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने ये देखा कि पैसे का इस कदर ज्यां, और ये कोई बहुत पैसे वालों की मैं आपसे बात नहीं कर रही, ये बिल्कुल मिडिल क्लास की बात है कि जिनके जिनके घर में इस वक्त 30-40 हज़ार की इनकम आती है। और इस वक्त पाकिस्तान में मिडिल क्लास की 30-40 हज़ार की इनकम ऐसी जिसके 2-3 बच्चे स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में अगर पढ़ रहे हैं तो उनके पास ऐसा तो महीने के आखिर में पैसे नहीं बचते, भाई 4-4, 5-5 हज़ार फीसें हैं स्कूलों की। और उस घर की शादी में 75 हज़ार का माइयों में डेकोरेशन, 30 हज़ार का सिर्फ शादी में स्टेज पर और रियल फूलों की डेकोरेशन, जिसका के मुझे इस कदर, मतलब मैं सिर्फ देख रही थी और मुझे अफसोस हो रहा था, गुर्बत कराची में इस कदर गुर्बत है कि आप तस्वर नहीं कर सकते। अभी हम आते आने से थोड़े दिन पहले मैंने अशीर के खत्म कुरान का प्रोग्राम रखा था, तो उसके लिए मतलब घर में गए थे, मेहमान वेहमान ज्यादा थे, तो मैंने एक खातून से कहा था कि आप आ जाइएगा खाना वाना बनाने के लिए। तो बेचारी बड़ी अच्छी, बहुत हमदर्द सी अच्छी खातून थी, बहुत जरूरतमंद। तो एक दिन मुझसे कहने लगी कि अभी थोड़े दिन पहले उनको किसी घर में जॉब खाना पकाने उसी पर आती थी, तो कहने लगी कि एक दिन बारिश हुई और रात इतनी बारिश हुई कि मेरा घर इतना टपक रहा था कि घर के एक कोना ऐसा था जहाँ पानी नहीं गिर रहा था। तो मेरे मियाँ ने कहा कि तुम वहां बैठ के सो जाओ, तो मैं ये जो जहाँ से पानी गिर रहा है मैं उसको प्याले में भर भर के बाहर फेंकता रहूंगा। तो इस तरह से मैंने रात गुजार के, तो सुबह मुझे उनके यहाँ खाना पकाने के लिए आना था। औरंगी की बात है, आप लोग शायद औरंगी का नाम सुना हो, कराची में समझे, अगर आपको गुर्बत और अफलास देखना था वहां चले जाएं, और उसमें हमारे भी बहुत से रिश्तेदार रहते हैं, ये नहीं है, हमारे भी बहुत रिश्तेदार दूर के नजदीक के, इस कदर की गुर्बत है। और उसमें हमारा स्टेज का फूलों की अरेंजमेंट, और ये किसी बर्गर फैमिली या किसी पैसे वाले के घर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मिडिल क्लास जस्ट हमारे आप जैसे लोग के तसल्ला तो इनका पूरा करवा रहा है। और वहां पर शादी का मेकअप 20 हज़ार का, वलीमे का 18 हज़ार का, और सिर्फ 3 घंटे की बात, क्योंकि बारात आती है 11 बजे और 1:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे रुखसती हो गई, दैट्स इट। और होता क्या है उन फूलों का कि फिर वो मेरे बच्चे दोनों और मेरे भाई का बच्चा, वो जब जहां देखा कि घर की शादी खत्म होने लगी, तो वो शादी खाला के पास गए कि काका अब तो शादी खत्म हो गई, हम ये फूल ले लें। उन्होंने सारे स्टेज के फूल चुन के और थैले में भर के वो घर ले आए। और हमने थोड़ी देर को भी ये नहीं सोचा कि जो 30 हज़ार हमने वहां पर लगा दिए, इससे मेरा ख्याल 3-4 घरों में बेसिक उनके घर, जो महंगाई का आलम है कि आटे की बोरी 350 रुपए की, एक आटे की बोरी, और गरीब सिर्फ रोटी खाता है, रोटी और उसको अगर सालन दाल मिल जाए कुछ भी। और नमूद और नुमाइश का ये आलम के मतलब आप किसको कहें और किसको ना कहें, बस सिर्फ जबान बंद कीजिए और आप देखते जाइए, और फिर आपको सुनने को यही मिलता है कि कनूती बनने की जरूरत नहीं, बस अपने काम से काम रखो। शादी ब्याह में मेहंदी वाले दिन, मेहंदी वेहंदी होती नहीं है, लेकिन जस्ट एक ये भी एक इजाफा था। हाँ, एक इजाफा था, मेरे मियाँ ने भी बहुत कोशिश की कि वो मेहंदी के दिन जो भंगड़े का प्रोग्राम था लड़कों का और लड़कियों का, उसको किसी तरह से रोका जाए। इन्होंने भांजा अपने भांजों को भी बिठा के समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको आखिर में उनके हमारे नंदोई ने ये कह के चुप करा दिया कि तुम्हें बीच में ज्यादा रंग में भंग डालने की जरूरत नहीं, तुम साइड में हो जाओ, और ये बच्चों की खुशी है, इसमें तुम्हें बोलने का कोई वो नहीं। तो हमारे मियाँ भी बस ये कह के हट गए कि समझाना मेरा फर्ज था, अब मैं बरी जिम्मा हूँ, अब जो करते हैं वो आप और आपके बच्चे जाने। तो पूरे शादी में ये स्टेज के करीब नहीं आए, और ना उसमें शरीक, मतलब शरीक एस सच के वो पीछे पंडाल में तो थे, लेकिन एस सच ना तस्वीरों के लिए आए और ना किसी उसमें आ गया, जिसका काफी बुरा मनाया गया। इन्होंने मुझे भी मना कर दिया कि तुम भी बस शरीक तो रहो, लेकिन किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो हम सुनना ही नहीं चाहते कि हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, और वही रातों को 2-2, 3-3 बजे तक फंक्शन खत्म हो, सुबह 11 बजे तक हम सो के उठे, ना नमाजों का होश। ये ओवरऑल मैं आपको एक बात बता रही हूँ। और आते टाइम मेरी किसी से ऐसी बहस होने लगी, तो उन्होंने कहा दीन ये नहीं है जैसा तुम लोगों ने बना लिया कि किनारा कशी। मैंने कहा किनारा कशी की बात नहीं, आप लोग सिर्फ गौर ये कीजिए कि इस इतनी बड़ी खुशी अल्लाह ने आपको दी, आपकी बेटों की बेटियों की शादी हुई, इसमें आपने कितना अल्लाह की खुशी का ख्याल रखा और कितना अपने नफ्स की खुशी का ख्याल रखा। आपकी नमाजें क्या वक्त पे हुई, आपने नमाजों की कितनी कुर्बानी दी। मैंने कहा मैं तो जागती थी 4-4 बजे, हम सब बैठे बातचीत कर रहे हैं, और फिर देखा कि इधर फजर का टाइम होने लगा, सब जाके सो गए। नहीं जमाइया तो फिर आप जब 4 तक रुके थे तो आप 6 तक भी रुकते ना, तो मैं मानती कि चलो ठीक है थोड़ा सा अल्लाह को भी खुश किया, आपने तो फर्जों की कुर्बानी दे दी। तो हम अगर छोटी छोटी बातों को नहीं महसूस करेंगे तो, और फिर ये कहते हैं कि कराची के हालात पता नहीं क्यों ऐसे। हालात हमारे अपने पैदा करते हैं, हमारे अपने अमल की जिम्मेदार, हमारे अमल का वो है, रिएक्शन है, लेकिन हमें नहीं समझ में आता। और वो जो है ना कि गुमराही में आगे से आगे बढ़ता चला जाता है इंसान, वही है। तो बड़ा अफसोस की बात है, हम भी अगर ऐसा करते थे। और लेकिन बात वही है कि दीन की समझ जब इंसान को नहीं होती तो वो बढ़ता चला जाता है। बहरहाल
तो आपको जैसे वहां पे जाकर आपने जो पर्दा किया जो पहले कभी नहीं किया था, और उसके बाद जो है वो आप शादी में पर्दा करके बैठी रही, और जैसे माहौल मुख्तलिफ था और आपने उसमें जो है वो एक हुस्न अमल करने की कोशिश की, तो इस चीज पर आपको किसने कायम रखा?
मैं बस सुबह शाम की जो दुआएं मैं यहाँ भी पढ़ती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना वक्त जरूर निकालती थी कि फजर पढ़ के और फिर मैं अपना पढ़ती थी, और रब्बना ला तज़िग़ वाली दुआ मैं कसरत से पढ़ती थी कि अल्लाह मैं इधर से उधर ना हो जाऊँ, लोगों की बातों में ना आ जाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर वक्त तक मैं इस चीज़ के ऊपर रही। आखिर में बस 2 प्रोग्राम ऐसे हुए कि जिसमें मैंने अपना नकाब मतलब बुरखा उतारा, जो भी मैं तैयार थी, फिर क्योंकि वहां पे भी पर्दे का बहुत इंतजाम था, एक मेरी रिश्ते की नंद की बच्ची का अकीका या कुछ था तो उसमें वहां पर, और एक मैंने शीर का प्रोग्राम किया था तो उसमें मैंने फिर औरतों का अलग रखा था, मर्दों का अलग, फिर कैटरिंग के लिए भी मैंने औरतें ही रखी थी, और दरवाजे पे मैंने अपनी मासियों को बिठाया था कि मैंने कहा कोई मर्द होता है वापसी के टाइम पे वो अंदर आके झांकना शुरू कर देते हैं, तो मैंने कहा उधर मैंने औरतों को बिठाया था जो हमारी मासियां थी कि आप मर्द जो भी कुछ कहता है आप अंदर आके मुझे मैसेज दो, लेकिन यहाँ से कोई मर्द झांकता हुआ मुझे नजर नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ी सी कोशिश की और अल्लाह ने मेरा साथ दिया, और बहुत से लोग इस चीज से बहुत खुश हुए, जो पर्दे वाले लोग थे वो बहुत खुश हुए कि तुमने एक कोशिश थी कि बीच में एक आध दफा ये हुआ कि हमने जो शहीद शहीद मेरे बच्चों के दादियाल में भी और नानियाल में भी हाफिज बच्चे हैं माशाल्लाह 8-10 बच्चे हैं, तो हमारे मियाँ ने उन सबसे पहले से बात की थी कि तुम लोगों को आके स्टेज पे तिलावत करनी है, तो हमने मर्दों में भी एक प्रोजेक्टर स्क्रीन लगवाई थी और औरतों में भी लगवाई थी, और फंक्शन मर्दों में हो रहा था और प्रोजेक्टर पे यहाँ हमें सब नजर आ रहा था कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, आवाज साउंड सिस्टम, फिर अल्लाह के नाम और किरत वगैरह लगाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आध दफा ऐसा हुआ कि प्रोजेक्टर चल नहीं रहा था तो वो ठीक करने वाला आया, लेकिन उसको भी अंदाजा था तो वो भी बस ऐसे ही आया और फिर चला गया। लेकिन बहरहाल मुझे खुशी इस चीज की है कि कोशिश की तो अल्लाह ने मदद की, थोड़ा बहुत जाहिर बात है इस कदर गंदगी में आपको थोड़ा बहुत मतलब आमेजिश हो गई, लेकिन उसमें भी दानिश्ता मेरी कोई वो नहीं थी, मजबूरी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, जो थोड़े दीनदार लोग थे बहुत खुश हुए कि आजकल तो शादियों में सिर्फ मौसीकी सुनने को मिलती है, आज तुम्हारे घर फंक्शन में आके इतना अच्छा लगा कि अल्लाह का कलाम सुनने को मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह घर से मैं 2 रकअत नफिल पढ़ के गई थी कि अल्लाह मैं जैसा चाहती हूँ ऐसा हो जाए, और ये सिर्फ तेरी महफिल है, इसमें कोई ऐसा मुझसे गलत काम ना हो जाए जो मुझे किसी की बात सुननी पड़े या कुछ भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह महफिल इतनी अच्छी थी, उसमें सिर्फ अल्लाह का जिक्र था और बहुत अच्छी महफिल थी, बहुत लोग बहुत खुश होके गए हमारे घर से उस फंक्शन से। लेकिन जिस वक्त मैं प्रोग्राम से एक दिन पहले जब अरेंजमेंट के लिए मैं वहां गई तो मैंने अपने मियाँ से कहा कि पर्दे का मुझे बिल्कुल सख्त चाहिए, और आप हॉल वाले से बात करें कि मुझे बिल्कुल सेपरेशन चाहिए। तो हमारे साथ एक दो हमारे रिश्तेदार भी थे, जब मैंने वहां मियाँ से बात की तो वो एकदम मेरे ऊपर नाराज होने लगी कि तुम क्या एक नया तरीका कर रही हो, तुम्हारे यहाँ कौन पर्दे वाला है जिसके लिए तुम इतना वो कर रही हो, जैसा दुनिया में चल रहा है वैसा करो। खैर मैं उधर तो उनसे तो खामोश हो गई, फिर थोड़ी देर बाद मैं मियाँ के पास गई, मैंने कहा देखिए अगर अल्लाह का एक हुक्म बच्चे ने कुरान हिफ्ज किया, अगर मैंने अल्लाह का एक हुक्म माना और अल्लाह ने मुझे तौफीक दी मैंने उसको करवाया, तो मैं इधर बेपर्दगी करके अल्लाह का हुक्म तोड़ना नहीं चाहती। तो इसके लिए आप क्लब वाले से जितनी सख्ती से बात कर सकते हैं आपसे करें कि मुझे जो भी अरेंजमेंट है भला से जितने पैसे तुम उसके ऊपर ले लो, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास इतना वैसा टेंट का नहीं था, लेकिन सेपरेशन उनके पास थी, तो खैर उन्होंने भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर दिया था, एंट्रेंस भी अलग से थी औरतों मर्दों की। तो मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि मैंने एक काम करना चाहा और अल्लाह ने मेरी मदद की। तो बात वही है कि नियत की बात है, और जब आप की नियत अच्छी होती है तो अल्लाह मदद करता है। फिर काफी लोग थे, अब वो मायूं वाले दिन भी बहन कहने मायूं था, अब मैं तैयार होके मैंने उस पर अबाया चढ़ा लिया, तो बहन ने कहा था कि अलग अलग होगा। अब मैंने देखा कि वो आगे तो औरतों का, पीछे मर्द बैठे हैं और गुजर के मर्दों में से जाना है। फिर मैं वापस आई, मैंने कहा आपा वहां तो मर्द सारे बैठे हैं। तो कहने लगी नहीं वो भी हट जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। अब वो उनकी नंदे मुझसे कहने लगी तुम ये अपना झोला तो खोलो, तुम ये उतारो। तो मैंने कहा मैं माहौल देखूंगी, मैं खोल दूंगी, क्योंकि मैं भी पूरी तैयार हूँ अंदर से, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी कपड़े दिखाऊं अपने। तो उसके बाद मैंने जब जाके देखा तो खैर बड़ी आपा की एक नंद भी बहुत पर्दे वाली है, तो वो मेरे पास आई, कहने की तुम मना क्यों नहीं करती अपनी आपा को। मैंने कहा मेरी पोजीशन नहीं है, आप नौशीबाई से बड़ी हैं, आप उनकी बड़ी बहन है, आप कह सकती हैं, लेकिन मेरी पोजीशन नहीं है। खैर वो मेरी बहनों के पास गई, उनको बहुत नाराज हुई कि तुमने कहा था पर्दा पर्दा, तो ये मायों में मर्दों का क्या काम है, अगर ये आ ही गए हैं तो इनको अंदर बिठाओ। आपा का घर माशाल्लाह काफी बड़ा है, तो फिर उन्होंने कहा इनको जल्दी खाना खिलाओ मर्दों को, और इनको अंदर करो, तो फिर औरतें फंक्शन मायों का रस्म करेंगी। खैर वो बहन ने डांटा तो मेरे बहन भाई ने फिर ये तो किया। अब मैं जो अंदर गई तो वहां वो मूवी वाला आ गया और फिर वो खाने वाला आ गया। अब मैंने एक तरफ खोलना शुरू ही किया था तो पीछे से फिर फौज खड़ी थी, फिर मैंने वो लपेट लिया। तो आखिर में फिर मुझे ये सुनने को मिला कि तुमको कनाडा इसीलिए भेजा था कि तुम ये झोला पहन लो। तो मैंने कहा खोल के दिखाओ। तो मैंने खैर दो तीन जब घर में अंदर रह गई तो मैंने खोला, तो कहने लगी कि बहुत स्मार्ट लग रही हो। मैंने कहा आपको तो मैं इतनी स्मार्ट लगी, मैंने कहा अगर कोई मर्द देख ले तो उसको मैं कितनी स्मार्ट लगूंगी, मैंने कहा उस गुनाह का वबाल किधर जाएगा। तो खामोश। फिर जाने के टाइम वो लोग आए हुए थे बांग्लादेश से, मेरी बहनों की बहनें थी। तो जब वो जाने लगी तो मुझसे कहती हैं कि तुम्हारी साबित कदमी देख के हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह हमें भी ऐसे ये पर्दे की तौफीक दे दे। तो बात ये कि दीन ईमान सबके अंदर है, बात वही है कि कब किसकी चिंगारी जल जाए। और बहरहाल अंदर से बुरा तो कोई भी नहीं होता, बस वही बात होती है कब किसको तौफीक अल्लाह दे दे, और ये मांगने से मिलती है। और अल्लाह हम सबको साबित कदम रखे और नेक अमल की तौफीक दे। आमीन।
जज़ाकअल्लाह खैर।
अस्सलाम वालेकुम
और
वरहमतुल्लाह।
इससे क्या बात हमारे सामने आती है कि वस्बिर अला मा असाबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्म अल उमूर। तो वो तो पत्थर हैं जो गिर पड़ते हैं टुकड़े होकर, हौसले भी कभी मिसमार हुआ करते हैं। और माशाल्लाह आपकी क्लास जो है कुरान की क्लास का हर फर्ज जो है वो पहाड़ी का चिराग बनना है। आप नमक का वो चिराग हैं, आप नमक के पहाड़ हैं, आप रोशनी का चिराग हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ हमारी बहन हमें ये पैगाम दे रही थी कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। टूटी हुई मंडेर पर छोटा सा एक दिया, टूटी हुई मंडेर पर छोटा सा एक दिया, हवा से कह रहा है तूफान चला के देख, हवा से कह रहा है तूफान चला के देख। और आपकी कुरान क्लास उन खुशकिस्मत क्लासों में से है जिनमें से माशाल्लाह दो बहनों ने जो है वो कुफर की इस धरती में, जिसे यहाँ पे कनाडा भी कहते हैं, यहाँ पे माशाल्लाह चेहरे का पर्दा किया है और निकाब पहना है, और वो आप ही की क्लास में से हैं। और जो आप में से हर एक को और माशरे के हर फर्द को जो है वो दावते फिक्र अमल दे रही हैं और ये बता रही हैं कि हमने जो पढ़ा है, एक तरफ इस्लाह अमल भी कर रहे हैं और करनी है, और दूसरी तरफ जो है इस्लाह मुआशरा, इस्लाह खल्क, वामुर बिल मारूफी वनहा अनिल मुनकरी वस्बिर अला मा असाबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। और हमने जब ये सबक शुरू किया था तो उसमें क्या था, पीछे आपने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान को हिकमत अता की, और हिकमत ही शुक्र है, और शुक्र बंदगी है, और बंदगी तौहीद है, और तौहीद ये है कि बंदा अल्लाह के लिए सारी दुनिया से नाराज हो जाए अगर जरूरत पड़े तो, है ना। सात बिन वकास रजी अल्लाह ने अपनी माँ की बात भी नहीं मानी थी। तो मुझे और आपको, हम सबको अपने अमलों पर गौर करना चाहिए, जहां जहां हमारे अमलों में जो जो कमी और कोताही है और उसको जो है वो अपने से दूर करने की फिक्र करें। और
वो हमारी ये बहनें आप सबको और मुझे भी, हम सबको ये पैगाम दे रही हैं कि ए मौजे बला कुछ उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, ए मौजे बला कुछ उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं। बहुत से लोगों ने सूरत नूर पढ़ी है, और असल में अंदर ईमान जो है ना इतना कवी नहीं है, ईमान के अंदर वो हलचल नहीं है, ईमान अभी पारा नहीं बना। क्योंकि पारा क्या होता है, हरकत करता है, और हरकत में बरकत है। ईमान तो नाम है कश्तियां जला देने का, ईमान तो नाम है अमल की बाजी लगा देने का, जी और जान की कुर्बानी कर देने का, आग में कूद पड़ने का, अपने ऊपर ओढ़नियां डाल लेने का। ईमान तो नाम है मुंह के साथ लगे हुए जो शराब के प्याले हैं उनको तोड़ देने का। ईमान जो है वो ठंडा ठंडा नहीं है, पोले पोले पैरी इस्लाम नहीं हो आवना, हुंजी ते जान दी बाजी लावनी पवेगी। तो एक तरफ अल्लाह के अहकामात हैं, एक तरफ सोसाइटी है, पीयर प्रेशर है। मैं सोच रही थी कि वो माइयों में सेपरेशन कैसी, माइयों ही क्यों, माइयों की कोई हकीकत नहीं है, इस्लाम में माइयों है ही नहीं, निकाह है और बहुत सी ऐसी रस्में हैं जो हमारा अब इसका हिस्सा बन चुकी हैं। अगर मैंने और आपने ये कुरान पढ़ा और पढ़ते चले गए, और उसके बाद जो है ये मेरी और आपकी जिंदगियों में जिंदा हकीकत ना बना, मेरे और आपके अमल की दास्तान ना बना, जो दुनिया में सिसक रहे हैं लोग उनको जीने के रास्ते ना बता के गया, मैं और आप एक मिसाल ना बनकर जिए, तो फिर हैफ है मेरे और आपके पढ़ने पर। इसलिए कि सभी पढ़ते हैं, सभी दुनिया में जीते हैं, लेकिन आइए मैं और आप आखिरत के लिए जिए, आइए अपने रब की इस बात को सच्चा साबित कर दें जो मेरा और आपका रब बार बार कुरान में ये बात कहता है, वादल्लाही हक्को वहुवल अजीजुल हकीम। अल्लाह ने जन्नतों के वादे, नेमतों के वादे, सुकून, सुरूर, खुशियां, मुसर्रतें, उनके वादे अल्लाह ने कुछ झूठे किए हैं, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। तो सबक में हमें जो बात पता चल रही है वो क्या है कि अल्लाह की बंदगी करनी है, कुछ भी नहीं देखना, ना सुबह ना शाम, ना देर ना सवेर, ना खुशियां ना गम, कहीं पे भी हैं जिंदगी की किसी भी स्टेज पर खड़े हैं, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। और असल बात क्या है, मा कद्दमत वाखरत, क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा। फिर आप देखिए आयत 18 में, वला तुसाइर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दी मराहा, लोगों से मुंह फेर कर बात न कर, लोगों के सामने अपना रुखसार न फैला, और जमीन पर इतरा कर न चल, और जमीन पर अकड़ कर न चल। क्यों ऐसा अगर हम करें तो इसका क्या नुकसान होगा। इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता हर मुख्ताल और फखूर को, हर खुद पसंद और फखर जताने वाले को, हर तकबर करने वाले और शेखी खोरे को। अब आप देखिए एक आयत में दो बहुत अहम बातें जो हैं वो कही गई हैं, और ये दो अहम बातें जो कही गई हैं जिनसे मना किया गया है वो कौन सी बातें हैं। ये तकब्बुर की अलामतें हैं, ये अल्लाह की बंदगी से निकलने की निशानियां हैं, ये एतदाल की कमी है। और क्या कहा, वला तो सायर के सायर ना कर। सायर क्या है, स्वाद ऐन रा अरबी जबान में एक बीमारी को कहते हैं जो ऊंट की गर्दन पर होती है, और इस बीमारी की वजह से ऊंट अपना मुंह हर वक्त एक ही तरफ फेरे रखता है, क्योंकि उसकी गर्दन मुड़ जाती, अपना मुंह हर वक्त एक ही तरफ फेरे रखता है क्योंकि उसकी गर्दन मुड़ जाती है, गर्दन सीधी रख ही नहीं सकता। इंसानों में लकवा की मारूफ बीमारी है जिससे चेहरा टेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो तुसाइर कहा गया शुरू में ला आ गया कि ये नहीं करना। इससे इसके मानी क्या हैं कि जब लोगों से मुलाकात करें, जब उनसे गुफ्तगू का वक्त हो, तो जब आप उनसे हम कलाम हो, तो उस वक्त जो है मुंह फेर कर गुफ्तगू ना करें, एराज ना बरतें। उनको जो है ये ना हो कि आप उनसे जो है वो पहलूते ही कर रहे हैं। तो दरअसल इस आयत में उन लोगों को सरजनश की जा रही है जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपनी दौलत, अपने हुसन, अपनी औलाद, अपने स्टेटस, अपने वे ऑफ लिविंग, अपने मयारे जिंदगी, अपनी कुर्सी, अपना इल्म, किसी भी वजह से वो गुरूर और तकबूर का जो है वो शिकार हो जाते हैं और फिर लोगों से बेरुखी और बेपरवाही जो है वो बरतते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि हिकमत नहीं है। हिकमत क्यों नहीं है? कि जिंदगी में शुक्र नहीं है। शुक्र क्यों नहीं है? कि जिंदगी में बंदगी नहीं है, तौहीद नहीं है। बंदगी क्यों नहीं है? बंदगी क्यों नहीं है? इसलिए कि अल्लाह के अलीम और खबीर होने पर, लतीफ और कदीर होने पर यकीन नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के जो अहकामात हैं वो अपनी जिंदगी में नाफिज किए ही नहीं, खौफे खुदा नहीं है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या कहा, वला तुसाइर खद्दा का। खद जो है ये गालों को कहते हैं और खुदूद जो है वो गालों की जमा है ना। तो खद्दा का, अपने गाल, गाल आप गाल किसी से हटाएं, अपने रुखसार को आप साइड पर करें, तो क्या चेहरा साइड पर हो गया ना। तो कहा कि अपने गालों को जो है वो मत फेरो। लिन्नास, इंसानियत जो है उसका जिक्र किया गया। लिन्नास से मुराद अवाम उन्नास है, आम लोग, गरीब भी हैं, फकीर भी हैं, जो भी सोसाइटी में बड़े बूढ़े छोटे बड़े मौजूद हैं, तो उनको हकारत की नजर से मत देखें। कितना खूबसूरत है मेरा और आपका दीन, वो मुझसे और आपसे सिर्फ नमाज, रोजा, हज, जकात का मुतालबा नहीं करता। वो ये कहता है कि जब बात करें तो बात कैसी करें। बात करें तो फिर बात जो है वो कैसी करें, बात में मेरा और आपका जो है वो अंदाज क्या होना चाहिए। तो ये बात जो है ना, ये शुक्र के मुनाफी है कि नेमते पाने के बाद इंसान दूसरों को हकारत की नजर से देखे और हमारे अंदर जो है वो अखबात ना हो, हमारे अंदर तवाजो ना हो। आप ये बात भी जो है वो नोट कर लीजिए कि जब किसी के अंदर किब्र होता है तो फिर वो क्या करता है, गालें फुला फुला कर बातें करता है ना। और किब्र जो है उस वक्त जो जुमले हम निकालते हैं वो किस तरह के होते हैं। कभी कहते हैं हूं, देखा नहीं अपने आप को बड़ी समझती है, या आम गरीबों को, या आम जिनके पास कपड़े नहीं हैं, या शादी में उन्होंने सादगी की है गुर्बत की वजह से। बाज़ औक़ात नेकी की वजह से लोग करते हैं कि ये अल्लाह ताला को ये बातें पसंद नहीं है, तो मगरूर लोग, तकबर करने वाले लोग किस तरह से बातें उस वक्त करते हैं। तो मुझे और आपको अपनी गुफ्तगू जो है ना उसका जायजा लेना चाहिए। और हम में से हर शख्स अपना मुहासबा खुद ज्यादा अच्छा कर सकता है। हासबू कबलान, तो हासबू अपना मुहासबा कर लो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए कि मेरी गुफ्तगू के कौन कौन से जुमले हैं जिसमें मैं दूसरों को तकलीफ देती हूँ, या फिर ये कि उसमें मैं अपने अंदर जो है वो अपने आप को बड़ा समझते हुए वो जुमले जो है वो बोलती हूँ। कभी नम्रों का जोम हो सकता है, कभी अमारत का, कभी गाड़ी का, कभी दौलत का, कभी बच्चों का, कभी जहानत का, कभी सलाहियतों का, मुख्तलिफ जोम हो सकते हैं कि हम दूसरों के बारे में क्या करते हैं कि गालें फुला फुला कर बातें करते हैं। तो लोगों से मुंह फेर कर बात न कर। आप अपना मुहासबा करें, मैं अपना मुहासबा करती हूँ। और दूसरी बात है, वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन में अकड़ करना चल। यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है मराहा। और आप देख लीजिए कि मराहा जो है इसके क्या मानी है। इतराना और तकबुर करना मराहा है। तकबुर जो है, तकबुर के लिए कुरान में 9 लफ्ज आए हैं, जिनमें से एक है फरेहा। फरेहा का इस्तेमाल 2 तरह होता है। ये खुद खुशी के मौके पे भी होता है कि जब इंसान तहे दिल से शुक्र गुजार होता है अल्लाह की नियमतों का, और जब इंसान अल्लाह की नियमतों का शुक्र अदा करने की बजाय इतराए और फूले ना समाए और खुशियां मनाए, तो उस वक्त भी ये फरा हालत इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखिए, आपने पीछे पढ़ा था, इस काला लहू कौमहु ला तफरह इन अल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन। जब कारून निकला था ना अपने खजानों और दौलत के साथ, तो कानून की कौम ने उसे कहा था, ला तफराह, इतराइए मत, खुदा इतराने वालों को पसंद नहीं करता। तो अब शादी का मौका है, घर लिया है, या बच्चे की कोई खुशी का मौका है, तो उस वक्त इंसान जो है वो नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय खुशी मनाते वक्त अल्लाह के नाफरमानी करे, बंदगी की हदूद से निकल निकल जाए, है ना, खुशियां मनाए गलत तरीके से। दूसरा है बतारा, नेमतों की फरावानी से इंसान जो है वो फट जाए या बहक जाए। ये लफ्ज बतारा फाड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे नेमत मिलकर किसी के दीदे फट जाएं, है ना, कि दीदे ही किसी के बारे में कहते हैं कि उसको उसकी फलां को दौलत क्या मिली, जॉब क्या मिली, ऐसे लगता है उनके दीदे ही उसने फाड़ दिए, किसी की शर्म हया नहीं रही, कोई खौफ नहीं, खौफे खुदा नहीं रहा, ना नमाज रोजे का एहसास रहा, गोया कि वो नेमत की फरावानी से किसी को खातिर में नहीं लाता, उस वक्त भी ये इस्तेमाल होता है बतारा। और मैंने फरेहा और बतारा क्यों इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ पे मराहा इस्तेमाल हुआ है और ये इतराने का तीसरा दर्जा है, पहले ये दो दर्जे हैं फिर तीसरा है, और कहा कि तू अपनी चाल में जो है वो मराहा ना कर, अकड़ कर ना चल। तो मराहा क्या है, खुशी से अंबसात से मुसरत से झूमने लगना, ये कहते हैं शिद्दतुल फरहा। जैसे पीछे फरहा है ना आपने पढ़ा फरेहा, लेकिन ये जो मरहा है ना ये शिद्दतुल फरेहा है, ये खुशी की इंतहा। इसके मानी ये हैं कि जब फूले नहीं समाए और इतराने लगे तो उसकी इंतहा को पहुंच गए। अब नाजो अदा का हाल ये हुआ, अब गुरूर और तकबूर का हाल ये है कि नाजो अदा से चल रहे हैं, अकड़ अकड़ कर चल रहे हैं, और ये तीसरा दर्जा है। और मेरा और आपका रब तो आप मुझसे और आपसे इतना प्यार करता है कि मेरी और आपकी चाल पर भी तकवा के पहरे बिठा दिए, पहले गुफ्तार पर तकवा के पहरे बिठाए, अब चाल पर तकवा के पहरे जो है वो बिठाए। जैसे सूरत बनी इसराइल में आप पढ़ ही चुकी हैं, लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाल तूला, 37 नंबर आयत है, कि कोई कितना ही अकड़ कर और सर ऊंचा करके चले लेकिन उसे ये बात नहीं भूलनी चाहिए। क्या बात नहीं भूलनी चाहिए, कि ना वो जमीन को फाड़ सकता है और ना वो पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकता है। तो जिस अल्लाह की कुदरत के आसार और अजमत जो है उसके आसार हमें हर तरफ नजर आ रहे हैं, तो फिर उस अल्लाह के आगे हमें अपने आप को झुका देना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए। गुरूर से चेहरा करता है, गर्दन नुमाया होती है, और चाल जो है ना वो भी मुतासिर होती है। चाल जो है उसमें भी इंसान जो है वो गुरूर की रविश जो है वो इख्तियार करता है। तो अब हजरत लुकमान जो हैं वो अपने बेटे से जो है जो दरख्वास्त कर रहे हैं, जो उसको नसीहत कर रहे हैं, जो उसको तस्कीर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वला तमशी फिल अर्दि मरहा, कि जमीन पर अकड़ करना चल। इसके मानी क्या है, कि अल्लाह ताला ने जमीन में जितनी चीजें रखी हैं, जितनी चीजें पैदा की हैं, वो सारी पस्त हैं। इंसान जो दुनिया में है उसको अपनी हकीकत को पहचानना चाहिए, वो भी पस्त है। आला और अरफा बुलंद, अल्लाह ताला है, ताला है, अरफा है। तो अल्लाह को पहचाने और अपनी चाल जो है उसमें हम किब्र इख्तियार ना करें, मराहा इख्तियार ना करें। इन्ना अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता हर मुख्ताल और फखूर को। तो मुख्ताल और फखूर जो है ये क्या है, मुख्ताल भी खा या लाम से है, इसके मानी क्या होते हैं, कि असल में खैल जो है इसके मानी होते हैं यदुल्लु अला हरकती फी तलव्वुद। खा या लाम जो है वो हरकत है जो हर आन नया रंग बदलती है, ये तखय्युल से है। तखय्युल के मानी क्या होते हैं, अभी आपके जहन में एक ख्याल था, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, और आप जो है वो ख्याली दुनिया में जो है वो, जैसे शेख चिली का नाम आपने सुना होगा, जो ख्यालात ही में रहता था, और उसकी बहुत सी बातें ऐसे हैं कि वो तस्वुर ही तस्वुर में बहुत कुछ अपने आप को समझता था कि मैं जो है वो मेरे पास जो है वो 1 रुपया है और इसको मैं बेचूंगा, फिर मैं तेल लूंगा, तेल का जो है वो टीन जो है, मतलब 1 रुपया बेचकर तेल का टीन उसने लिया है, या तेल एक बर्तन में है वो उसके पास पड़ा है, अब उसने ख्याल करने शुरू किए कि तेल बेचूंगा, कारोबार करूंगा, अच्छा फिर मेरी शादी होगी, फिर जो है बच्चे होंगे, फिर जो है वो मुर्गियां पालूंगा, मुर्गियां अंडे देंगी, फिर मेरा और कारोबार जो है वो बढ़ेगा, और अब मेरी बीवी जो है अगर मुझे कुछ कहेगी तो, या मेरा बच्चा मुझे सताएगा, तो फिर वो टांग मारता है तो तेल जो है गिर जाता है सारा। अब ना शादी हुई, ना बच्चे हैं, ना कारोबार है, ना बिजनेस है, जो वो थोड़ा सा तेल था वो तखयुल की नजर हो गया, वो सारा जो है वो खत्म हो गया, है ना। तो तखयुल के माने ही है तसव्वुर बांधना, तकब्बुर करना, इख्ताल कहते हैं अकड़ अकड़ कर चलना, तकब्बुर की चाल चलना। असल में खैलुन अरबी जबान में घोड़े को कहते हैं। घोड़ा क्या करता है, उड़ता है, भागता है, सरपट दौड़ता है। तो अब उसी से ये है कि वो शख्स जो ख्यालात में रहता है गोया कि वो घोड़े पर सवार रहता है, ख्याल ख्याली में, ऐसे शख्स का दिमाग आम आदमियों की जो सतह होती है उससे ऊंची सतह पर होता है। तो मरहा जो है ये, जैसे आपने मरहा पढ़ा ना, तो इख्ताल जो है ये मरहा से अगला दर्जा है, ये इतराने का, तकबर करने का चौथा दर्जा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं पसंद नहीं करता, मैं मोहब्बत नहीं करता, मुझे अच्छे नहीं लगते वो लोग जो कुल्ला मुख्तालिन, जो ख्यालात में रहते हैं, जो तसव्वुर ही तसव्वुर में जो है वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। यानी इख्ताल के मानी है मुतकब्बिर रहना, चाल चलना, और दूसरों को हकीर समझना। फिर क्या कहा, सिर्फ मुख्तालिन ही का फखूर भी कह दिया, फखूर फखर से है, और ये इतराने का पांचवा दर्जा है। ऐसी बातों पर शेखी बिगाड़ना जो इसके अपने कब्जे और इख्तियार में ना हो। मसलन आप कोई मिसाल दें, जैसे किसी की आंखें बड़ी खूबसूरत है, मोटी हैं और झील जैसी हैं, माना के बड़ी खूबसूरत है, लेकिन उसका अपना क्या इख्तियार है आंखों के हुस्न पर। किसी का रंग सफेद है, उसका अपना क्या इख्तियार है उसके रंग की सफेदी पर। उसका कद लंबा है, उसका अपना क्या इख्तियार है कद के लंबा होने पर, है ना। अगर कोई लड़का पैदा हो गया, बेटा है, वो उसी पर फखर करता है। अगर किसी अच्छे खानदान में कोई पैदा हो गया तो अपने हसब नसब पर ही फखर करता चला जाता है। तो फखर ऐसी बातों पर शेखी बिगाड़ना है कि जो इंसान के अपने कब्जा और इख्तियार में है ही नहीं। विरासत में दौलत मिल गई, उसी पे वो शेखी बिगाड़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे एक आयत के अंदर ये चीज बहुत लरजने वाली है, बहुत डराने वाली है, बहुत ज्यादा जो है वो कांपने वाली है, हमें हमें बहुत परेशान करने वाली है कि एक आयत में अल्लाह ताला ने मरहा, इख्ताल और फखर, तीनों जो मजमूम सिफात हैं, जो बुरी सिफात हैं, उनका जिक्र किया और बिल तरतीब किया कि मरहा भी नहीं होना चाहिए, मुख्ताल भी नहीं होना चाहिए, और फखूर भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है, फिर अल्लाह ताला को पसंद क्या है, अल्लाह कैसे लोगों से मोहब्बत करता है। वक्सिद फी मशी का वगुद मिन सौतिक, पहली बात यह है वक्सिद, एतदाल इख्तियार कर, फी मशीक अपनी चाल में। तो अल्लाह ताला को जो चीज पसंद है वो मियाना रवि है। मियाना रवि है कि अपने अंदर जो है वो मियाना रवि इख्तियार की जाए। और आप देख लीजिए कि यहां पर जो है, आप कहती हैं ना उसकी इक्तसादी हालत अच्छी नहीं है ना, तो यहां पर भी क्या है, वक्सिद और काफ स्वाद दाल, आप पहले भी ये लफ्ज पढ़ चुके हैं, क्या मानी है इसके। हाँ, कसद जो है ये म्याना रवि के लिए इस्तेमाल होता है, इरादे के लिए भी इस्तेमाल होता है। मसलन आप देखें कि कुरान में हमें इतदाल के लिए, आप एक वस्त पढ़ चुकी हैं, उम्मते वस्त, है ना, औस्त, मेरा तो औस्त दर्जा है, वो औस्त दर्जे के लोग हैं, एक है वस्त, और दूसरा आपने तकवीन भी पढ़ा है, लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीन। तो जो पहला दर्जा होता है ना इतदाल का, वो है काफ स्वाद दाल। इसके मानी है किसी अमल में अफराद तफरीद से बचकर एतदाल की राय इख्तियार करना, और अगर जो है वो ये लफ्ज इस्तेमाल होगा तो मानी क्या होंगे कि अफरात और तफरी से बचते हुए दरमियानी राय अख्तियार की जाए। आमतौर पे जब इक्तसाद का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो अमूमन खर्च के बारे में आता है, इखराजात के मुतालिक इस्तेमाल होता है, लेकिन ये लफ्ज सिर्फ खर्च के बारे में नहीं है कि खर्च करने में इतदाल इख्तियार किया जाए तो कसद आएगा, बल्कि जो है ये लफ्ज आम है। और यहाँ पे जो है वो वक्सिद फी मशीक के मानी क्या है कि अपनी चाल में इतदाल इख्तियार करो, म्याना रवि इख्तियार करो, ना तो बहुत दौड़ भाग कर चलो, ये वकार के खिलाफ है, क्योंकि हदीस में है कि चलने में बहुत जल्दी करना मोमिन की रौनक को जाया कर देता है। इसी तरह चलने में खुद अपने आप को या किसी को दूसरे को नुकसान भी पहुंचने का खतरा होता है, और ना ही बहुत आहिस्ता चलना, ये ऐसे ही ना तसन्नो वाली बात होती है, तकबुर है कि आहिस्ता चला जाए। तो बहरहाल आप देखें कसदुस सबील भी कुरान में आता है। आप सूरत नंबर 16 और आयत नंबर 9 में ये पढ़ चुकी हैं, वअलल्लाहि कसदुस सबील वमिन्हा जाइर, और अल्लाह पर पहुंचती है सीधी राह और इसके अलावा सब राहें टेढ़ी हैं, है ना। तो काफ स्वाद दाल के मानी क्या है, किसी अमल में अफरात और तफरीत से बचकर एतदाल की राह इख्तियार करना, और वसत है बहुत सी चीजों का जो है वो दरमियान, बहुत ज्यादा वसी मफहूम है इसका, अमाल का दरमियान भी, किसी भी चीज का दरमियान, उम्मत वस्त। तकवीम ये होती है कि एक ही चीज में हर पहलू से इतदाल को मलहूज रखना। बहरहाल हमारा इस वक्त उनवान क्या है, बात क्या, वक्सिद फी मशी का, कि अपनी चाल में इतदाल इख्तियार कर। तो क्या करना है, तेज भी नहीं चलना, आहिस्ता भी नहीं चलना, म्याना रवि इख्तियार करनी है। तो यहां पे रफ्तार की तेजी या सुस्ती जेरे बहस नहीं है, जरूरत है तो आप तेज भी चल सकते हैं, अगर आपको कोई मजबूरी है, कोई बीमार है, कोई मसला है तो आहिस्ता भी चल सकते हैं, इसका कोई शरीयत ने जाब्ता मुकर्रर नहीं किया है ना। बाजू का सैर कर रहे हैं आप आहिस्ता आहिस्ता चल सकते हैं, आपको जल्दी है, कॉलेज स्कूल जा रहे हैं आप, जो है वो हॉस्पिटल जाना है आपने, कोई भी काम है, तो तेज चलने में भी कोई कबाहत नहीं है। जो चीज यहाँ पे दरअसल मकसूद है वो नफ्स की उस कैफियत की इस्लाह है कि जिसके असर से इंसान की चाल में दिखावे की एक मिस्कीनी पैदा हो जाती है, जैसे चाल में एक जो है वो बड़ाई का घुमंड पैदा हो जाता है, तो एक खास तरस की चाल ढाल उससे मना किया जा रहा है, क्योंकि जब कोई शख्स जो है वो तकबूर से चलता है तो पता चलता है कि चाल के अंदर एक अकड़ है, तो कहा कि अपनी चाल में म्याना रवि इख्तियार कर। अच्छा, चाल के अंदर जब घुमंड आता है, चाल की शान, वो क्यों घुमंड की शान हो जाती है, उसकी क्या रीजन हो सकती है, दौलत हो सकती है, दौलत की वजह से, इक्तदार की वजह से, है ना, और क्या हो सकता है, हुसन लिबास है, बहुत कीमती पहना हुआ है, इल्म है, ताकत है, तो ये चीजें जो हैं वो इंसान की चाल में एक तकब्बुर जो है वो पैदा कर देती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया कि सहाबाए कराम को यहूद की तरह दौड़ने से भी मना किया जाता था और नसारा की तरह बहुत आहिस्ता चलने से भी, और हुक्म यह था कि इन दोनों चालों की दरमियानी चाल इख्तियार करो। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने किसी शख्स को बहुत आहिस्ता चलते देखा, जैसे अभी मर जाएगा, तो लोगों से पूछा इसे क्यों, ये ऐसे क्यों चलता है। अब आप देखें कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ने जब देखा तो पूछा कि इन्हें क्या हो गया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को ये बात बताई गई कि ये कुर्रा में से है, कुर्रा कारी की जमा को कहते हैं ना, और उस जमाने में कारी उसको भी कहा जाता था जो तिलावत कुरान की सेहत और आदाब के साथ कुरान का आलिम हो, मतलब ये था कि ये कोई बहुत बड़ा कारी आलिम है, इसलिए ये ऐसे चलता है। इस पर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आपने कहा कि उमर सैयदुल कुर्रा थे, इससे ज्यादा बड़े कारी थे, मगर उनकी उनका हाल क्या था, जब चलते तो जोर से चलते, जब बोलते तो कुव्वत के साथ बोलते, और जब पीटते तो खूब पीटते थे। मुराद क्या है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की ये आदत तो नहीं थी, है ना, और वो क्या करते थे उनके मतलब मौके की मुनासबत से जरूरत के मुताबिक, बड़ा बेहतरीन अमल था। तो यहाँ पे भी जो असल बात है जो मेरे और आपके अमल की है वो क्या है कि हम अपनी चाल जो है ना चाल को भी एक बेहतरीन चाल बनाएं। अब आप देखें कि हजरत लुकमान को अपने बेटे की चाल की भी फिक्र है ना। बाद लोग होते हैं कि चलते हैं ना, तो एक दफा इधर ऐसे मटक लटक कर इधर खड़े हो गए, कभी लटक मटक कर उधर को हो गए, जूतों को जमीन के साथ घिसा घिसा कर अजीब सी एक आवाज पैदा होती है, बाजू का टख टख जोर जोर से आवाज आती है ना, एक झंकार की सी, ऐसे जोर जोर से चलते हैं बाज औरतें भी कि मर्द भी पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। तो मंशा ये था हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का, आपको अपने बेटे की इतनी फिक्र थी, उसके अकीदे की भी, उसके अमल की भी, उसकी उसका लोगों के साथ सोशल मामलात कैसे हैं, कहा कि नहीं नेकी का हुक्म दे बदी से मना कर, फिर ये कि ये सबर करता है कि नहीं इसकी भी आपको फिक्र थी, नमाज पढ़ता है कि नहीं इसकी भी फिक्र थी, अब ये भी फिक्र थी कि इसकी चाल ढाल और इसकी गुफ्तार कैसी है। और आपको पता है ना, लिबास चाल ढाल गुफ्तगू इनसे मिलकर इंसान का किरदार बनता है ना। सहाबा कराम का मामले का अंदाजा आप इससे कर सकते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक दफा एक शख्स को सर झुकाए हुए चलते हुए देखा तो पुकार कर फरमाया सर उठाकर चल, इस्लाम मरीज नहीं है। और एक शख्स को उन्होंने मरियल चाल चलते देखा तो फरमाया जालिम हमारे दीन को क्यों मारे डालता है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के नजदीक दीनदारी का असल मंशा क्या था, ये भी नहीं कि चलें तो बीमारों की तरह फूंक मार मार कर कदम रखें, खाम खाम मिस्कीन अपने आप को बनाएं, और ये भी नहीं कि हर वक्त मरे हुए चलना के लोगों को पता चले कि इस्लाम पर अगर हमने अमल करना हुआ तो इस्लाम पर अमल करना दरअसल अफसुर्दा रहना है, इस्लाम पर चलना खुद मुसलमानों के अंदर अफसुर्दगी पैदा कर देगा। तो जो जितना ज्यादा बेहतरीन अमल करने वाला शख्स है तो उसको क्या करना चाहिए कि अपनी जो चाल है, अपनी जो आवाज है, उसमें दोनों में जो है वो मियां नरवी जो है वो इख्तियार की जाए, क्योंकि आप देखें कि हम जो है वो अपनी चाल को एक मुनासिब चाल बना सकते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल जो थी वो कैसी चाल थी, आप कैसे चलते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आप जब चलते थे तो आपके चलने का अंदाज ये होता था कि तेज तेज कदम रखते थे और ऐसे लगता था जैसे नशेब से फराज की तरफ आप आ रहे हैं, नशेब से बुलंदी से नीचे की तरफ आप आ रहे हैं, जैसे सफर जो थे वो करते हुए आपके कदमों के अंदर एक वकार भी होता था और उसके अलावा आपके चाल के अंदर एक तेजी भी होती थी। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज बड़ा ही खूबसूरत था। अब यहाँ पे जो अगली बात है वो क्या है कि वग़दुद मिन सौतिक, और अपनी आवाज जरा पस्त रख। अब आवाज को नीचा करने को कहा जा रहा है कि आवाज जो है उसको हल्का रख। आपने पीछे गज़े बसर पढ़ा, निगाहों को नीचा रख, हर वक्त नीचा रखना मुराद नहीं था, है ना। अब यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि आवाज को जरा नीचा रख, इसका ये नहीं मतलब कि आपकी आवाज किसी तक पहुंचती नहीं है फिर भी आप नीचा ही बोलेंगे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि मौका महल के मुताबिक आवाज को बुलंद भी किया जा सकता है, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है कि हमेशा जो है वो हलक फाड़ कर और कान फाड़ने वाली आवाज जो है वो निकाली जाए। क्यों? इन अनकरल अस्वाती ला सौतुल हमीर, सब आवाजों से ज्यादा बुरी आवाज गधों की आवाज होती है। अब यहां पर जो है अनकर आया है, ये आपको पता ही है, इसम तफजील है, इसके मानिए सबसे ज्यादा जो बुरी है, मकरूह है, बुरी आवाज है। और अस्वात सौत की जमा है आवाजें, और किसकी आवाज? हमीर गधे की आवाज है। अब आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने नफरत दिलाने के लिए ये गधे का जिक्र किया है, क्योंकि गधा जो है उसकी आवाज बड़ी करख्त होती है, उसका लहजा बड़ा सख्त होता है, लबो लहजा जो है उसका बड़ा सख्त है। जब वो जो है वो चीखता है तो कैसे चीखता है, कितने जोर से जो है वो चीखता है। तो गोया के जो बात यहाँ पे समझाई जा रही है वो ये है कि अपनी जो आवाज है ना, अपनी आवाज को भी जो है वो मुतवाजे करना चाहिए, अपनी आवाज में भी मियाना रवि जो है उसको इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है कि इंसान जो है वो जोर जोर से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर जो है वो बात करे। और गधे की आवाज सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं है कि उसकी आवाज सबसे ज्यादा ऊंची समझी जाती है, सिर्फ इतना ही नहीं है, ऊंची होने के साथ जो अहम बात है कि गधे की आवाज सबसे बदतर और करी है। इसीलिए हदीस में आता है कि गधे की आवाज सुनो तो शैतान से पनाह मांगो। ये बुखारी की रवायत है कि जब तुम्हें गधे के हींकने की या उसके जोर से जो है वो आवाज निकालने की आवाज आए तो उस वक्त शैतान से जो है वो शैतान की पनाह मांगो। तो चौपायों में से सबसे ज्यादा मकरूह आवाज गधे की है जो बहुत शोर करता है। अब आप देखिए कि यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माशरत के आदाब बताए हैं। और पहला अदब क्या है कि लोगों से मुलाकात के वक्त रुख फेर कर बात नहीं करनी चाहिए। आप बात कर रही होती हैं, आपका रुख इधर को होता है और पीछे आप किसी से बात करके उसकी तरफ पीठ होती है, रुख दूसरी तरफ होता है ना, तो गोया कि इज्जत नहीं हम उससे कर रहे, तो मुंह फेर कर बात नहीं करनी। दूसरी बात क्या कही, जमीन पर इतरा कर नहीं चलना। तीसरी बात क्या कही, दरमियानी चाल चलने की हदायत की। चौथी बात क्या की, बहुत जोर से शोर मचा कर बोलने की ममानियत कर दी। तो चार चीजें यहां पर बताई गई हैं जो अदाबे मुआशरत में से हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये सब चीजें जमा थी। आप जो थे बेहतरीन अमल करने वाले थे। जैसे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद अली से दरियाफ्त किया रजी अल्लाह अन्हु कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों के साथ बैठते थे तो आपस में आपका तर्ज मामला क्या होता था, अमल क्या होता था। उन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खुशो खुर्रम मालूम होते थे। आपके इखलाक में नरमी और बर्ताव में सहूलत मंदी थी। आपकी तबीयत सख्त ना थी, बात में दुरुस्त ना थी, बात भी दुरुस्त नहीं थी। आप ना शोर मचाने वाले थे, ना फोशगो थे, ना किसी को ऐब लगाते थे, ना बुखल करते थे। जो चीज दिल को ना भाती इसकी जानिब से गफलत बरतते थे, दूसरों को इसकी तरफ से ना उम्मीद भी ना करते थे, और जो चीज अपनी मरहूब ना हो दूसरे के हक में इसकी काट ना करते थे। खामोशी इख्तियार कर रखी थी आपने। तीन चीजें आपने बिल्कुल छोड़ रखी थी, जिसमें नंबर एक झगड़ना, नंबर दो तकब्बुर करना, जो चीज काम की ना हो इसमें जो है वो मशगूल होना। तो जो फजूल चीजें थी उसमें जो है वो मशगूल ही नहीं होते थे। तो मैं और आप जो हैं वो अशरफुल मखलूकात में से हैं, और एक बेहतरीन मुसलमान हम सबको बनना चाहिए। और ये बातें जो हैं ये शुक्र के मनाफी हैं कि हमारी हम चीखें चिल्लाएं, और वैसे औरतों को चीखने चिल्लाने की ज्यादा आदत होती है ना घर के अंदर, बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़े में बहुत चीखती चिल्लाती हैं, ऊंची ऊंची ताने देना, बातें करना। या फिर ऐसे होता है कि औरतें जो हैं वो बच्चों के साथ सारा दिन चीखती चिल्लाती रहती हैं, है ना, सारा दिन। और फिर जब हम बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं तो नतीजा क्या निकलता है उसका, कि बच्चे हमारी बात की कोई परवाह भी नहीं करते कि अम्मी की तो आदत है चीखना, अम्मी की तो आदत है जोर जोर से जो है वो बोलना और बातें कहना। और वो जो है फिर बच्चों के अंदर ना माँ से नफरत होनी शुरू हो जाती है, और अगर किसी का बाप ऐसे करता होगा तो जाहिर है कि बच्चे उससे भी मोहब्बत जो है वो नहीं करेंगे। तो असल बात क्या है कि हमें अपने ऐसे जुमले और ऐसी गुफ्तगू जो हम चीख कर चिल्ला कर कर रहे होते हैं तो उस पर हमें गौर करना चाहिए और अपने अंदर से ये चीजें निकालनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा चीखने चिल्लाने का हमें नुकसान है। हमारा नंबर एक इखलाक खराब होता है, नंबर दो हमारा रब नाराज होता है, नंबर तीन जो है उसका कोई मुस्बत फायदा हमें नजर नहीं आता, और उसके अलावा जो है हम कुरान और सुन्नत के जो है वो खिलाफ चलते हैं, है ना। तो ये चीज कोई पसंदीदा चीज तो नहीं है। फिर इसके अलावा हम क्या करते हैं कि बीमारी फिर हो जाती है, ज्यादा हर वक्त बोलते रहना बुड़बुड़ाते रहना, तो कभी शोहर से कभी बच्चों से, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि ब्लड प्रेशर, शुगर, है ना, गुस्सा, हर वक्त गुस्से में है। तो फिर करना क्या चाहिए, हमें अपनी जो गुफ्तगू है उसको इस्लामी रंग देने के लिए मुझे और आपको अपने जो है वो दिन और रात का जायजा लेना पड़ेगा। फिर वही बात, आप कहेंगी कि फिर होमवर्क मिल गया, है ना। तो आप में से हर शख्स जो है वो अपने दिन रात का मुहासबा करे, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी अपना मुहासबा करूँ। मैं आपसे नहीं कहती, दरअसल मैं अपने आप से कहती हूँ, है ना, मैं भी और आप भी, कि मैं कितना चीखती हूँ, मैं कौन से ऐसे जुमले बोलती हूँ, जोर जोर से बोलती हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की आवाज से तशबीह दी है, चीख कर बोलना, जोर जोर से बोलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा नहीं करते थे, है ना। अब आप देख लीजिए, मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात हमारे सामने आती है वो ये है कि आपका मामला क्या था, कि आप क्या करते थे कि अपनी महफिल में सबसे ज्यादा बावकार होते। बावकार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा नहीं बातें करनी पड़ेंगी। जो ज्यादा बातें करता है ना, वो कभी बावकार नहीं हो सकता, उसका वकार कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। क्यों? बहुत ज्यादा बातें करना, हर वक्त फ्री हो जाना, छोटे से भी, बड़े से भी, अजनबी से भी, जानने वाले से भी। और नतीजा क्या निकलता है कि बहुत ज्यादा बोलने से ना गलतियां बहुत हो जाती हैं। कभी आप मजाक कर रहे हैं, कभी वो आपसे मजाक कर रहा है, हदों से बाहर निकल गए, तू तू मैं, तुम आप पहले थे, आप थे फिर तुम बन गए, फिर तुमसे तू पर आए, है ना। तो क्या है कि आप अपनी महफिल में सबसे ज्यादा बावकार होते। नंबर दो, अपने पाँव वगैरह ना फैलाते। अगर टांगों में दर्द हो रही है, पाँव में दर्द होती है, तो हम महफिल वालों से माजरत करते हुए फैला सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा खामोश रहते, बिना जरूरत ना बोलते। अब बिना जरूरत ना बोलना, जो शख्स नामुनासिब बात बोलता इससे रुख फेर लेते। आपकी हंसी मुस्कुराहट थी, आपकी हंसी मुस्कुराहट थी, इसका आप तो आपको मतलब समझ में आया ना। एक होता है तबस्सुम और एक होता है दाहे का। हम तो दाहे का भी ज्यादा रहते हैं ना। दाहे का क्या होता है? मुंह खोल कर हंसना, दवाहिक। और तबस्सुम क्या है? जरा सा, थोड़ा सा स्माइल, यानी स्माइल और लाफ। आपका लाफ स्माइल था, आप हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। बहुत कम है कि पूरा मुंह खोल कर आप हंसे हो, तो आपकी हंसी मुस्कुराहट थी। और कलाम दो टोक, ना फजूल ना ज्यादा ना कम। आपके सहाबा की हंसी भी आपकी तौकीर में, आपके इत्तबा में मुस्कुराहट ही की हद तक होती। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान ने ऐसे तो नहीं कहा, वह इन्नक लअला खुलुकिन अजीम, कि आप जो थे वो इखलाक के आला मयार पर जो थे वो कायम थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का और अंदाज क्या था? आप कैसे बात करते थे? किसी की ऐब जुई नहीं करते थे, वही बात जबान पर लाते जिससे सवाब की उम्मीद होती। जब बात आप करते तो आपके साथी सहाबा यूं सर झुकाए हुए होते गोया सरों पर परिंदे बैठे हैं। जब खामोश आप होते तो लोग गुफ्तगू करते। हमसे ये गलती भी हो जाती है कि दूसरा बोल रहा होता है, हम बीच में बोलना शुरू करते हैं, लोग आपके पास गपबाजी ना करते। फजूल बातें आपकी मौजूदगी में नहीं करते थे। आपका एक रूप था, आपकी नेकी का एक असर था, है ना, वकार था आपका एक। आपके पास जो कोई बोलता सब इसके लिए खामोश रहते, यहां तक कि वो अपनी बात को पूरी कर लेता। इनकी बात वही होती जो इनका पहला शख्स करता। जिस बात से सब लोग हंसते इससे आप भी हंसते, और जिस बात पर सब लोग ताज्जुब करते इस पर आप भी ताज्जुब करते। बहरहाल बहुत सी बातें हैं आप रहीकुल मख्तूम में, मोहसिन इंसानियत में, रहमतुल आलमीन में, मोहम्मद अरबी में, और सीरत की किताबों में पढ़ी हुई हैं, लिखी हुई हैं। आप भी इसको पढ़ें, मैं भी इसको पढ़ूं, और मेरे और आपके घरों के झगड़े, खानदान के झगड़े, दोस्तों के झगड़े आज भी खत्म हो सकते हैं, अगर मैं और आप अपनी सीरत और किरदार को उस्वाए रसूल और कुरान के मुताबिक जो है वो ढाल लें। ये आयतें और ये वसीयतें जो हजरत लुकमान ने अपने बेटे को की हैं, वो इसलिए नहीं की कि इनको पढ़ें और फिर आगे गुजर जाएं, ये इसीलिए की हैं कि मैं और आप इन पे अमल करें, और मेरे और आपके अमल की ये आयतें जो हैं वो जीनत बन जाएं। तो ये जो हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की है, तो उसमें ऊंची आवाज से चीख चिल्लाकर बात करना भी जो है उससे मना किया है। तो बाज़ घरों में चीखने चिल्लाने की बहुत आदत होती है, और एक घर में इस वजह से जो है वो तलाक तक बात आ गई कि बीवी चीखती बहुत ज्यादा थी, चिल्लाती बहुत ज्यादा थी। तो क्या करना है फिर? इसका हमें कोई तो हल जो है वो तलाश करना है ना, और हमें अपना मुहासबा भी करना है, अपना जायजा भी लेना है। और ये यहाँ पे उन्होंने जो नसीहतें की हैं हजरत लुकमान ने, उन सारी नसीहतों का निचोड़ क्या है कि शुक्र गुजार बना जाए। सारी नसीहतों का निचोड़ क्या है, करने में यह है कि शुक्र गुजारी करे, जो बंदगी है। शुक्र ही असल में बंदगी है। इल्म अमल पर, इल्म पर अमल हिकमत है, और हिकमत क्या है कि इंसान जो है वो शुक्र गुजार बने। तो हजरत लुकमान ने अपने बेटे को शुक्र गुजार बनने की जो है वो नसीहत की है। और दूसरी अहम बात क्या है कि तकबुर ना किया जाए। तकबुर जो है ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, तकबुर ना करना। और तकबुर जो है ये इतनी बुरी सिफत है, इतनी शदीद बीमारी है, पता भी नहीं चलता और इंसान के किरदार में तकबुर आ जाता है ना। मुझे तो ये चीज बड़ी डराती है, और यकीनन आप भी इसे सहमते होंगे कि काली रात में काले पत्थर पर काली चींटी, स्याह चींटी, पता ही नहीं चलता ना कब तकबुर जो है मेरे और आपके अमल के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे, हम सब से राजी हो जाए, और हम सबको बेहतरीन मुसलमान बनाए। अब तक की जिंदगी में बहुत सी गलतियां और कोताहियां हुई, हम चीखते भी थे, हम बोलते भी थे, हम तकबुर करते थे, हम जो थे वो नशुक्री करते थे, हमारे घरों में झगड़े होते थे, हमारी चाल चलो ठीक नहीं थी, हमने अपने वालदैन की खिदमत में बड़ी कमी की है, अल्लाह का खौफे खुदा हमारे अंदर नहीं था। क्योंकि जब पीछे आपने आयत नंबर जो 16 है उसमें खौफे खुदा और अल्लाह की अजीम कुदरत का जो पढ़ा, तो उसका निचोड़ क्या है कि जबान पर भी तकवा के पहरे और कदमों पर भी तकवा के पहरे बिठा दिए जाएं। अब जबान में से कोई जुमला निकालेंगे तो डर डर कर, एक एक कदम उठाएंगे तो नाप कर, सोच कर किस रास्ते में उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं, और तकवा के तहत कदम उठाएंगे ना। तकवा जो है वो जबान को भी लगाम देता है और कदमों को भी लगाम देता है ना। और हकामा असल में जो जानवर को लगाम पहनाई जाती है ना, उसको कहते हैं हकामा। क्योंकि वो क्या करती है लगाम, वो जो रस्सी सी होती है जो नाक के अंदर से और इधर उसके मुंह पर डाल दी जाती है, क्या करती है उसको, उसको नथ जो होती है वो क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है। तो हिकमत भी इंसान को कंट्रोल करती है, उसी से ये लफ्ज जो है वो निकला है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन अमल करने वाला बनाए, हम सबसे राजी हो जाए। दौड़ो जमाना चाल कयामत की चल गया, कुछ बहने हैं वो नेकियों में आगे निकल गई हैं, मैं और आप हैं खड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ख्याल अच्छा है, उनकी परवाज उन्हें ताबा फलक ले पहुंची, हम यही सोच रहे हैं कि ख्याल अच्छा है। उसकी सोहबत में बैठ कर देखो कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। काश मेरी और आपकी जिंदगी ऐसी हो कि उसके बाद जो है वो लोग ये पुकार उठें कि उसकी सोहबत में बैठ कर देखो कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और ये सहाबा की सोहबत थी, ये रसूल अल्लाह की सोहबत थी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।